नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंटिस्ट, पीटर ब्रूस, एंड्रू ब्रूस और पीटर गेडक की व्यावहारिक संदर्भ पुस्तक है। इसका दूसरा संस्करण आर और पाइथन दोनों में उदाहरणों के माध्यम से डेटा साइंस के लिए जरूरी सांख्यिकी अवधारणाओं को व्यवस्थित करता है। पुस्तक का उद्देश्य पारंपरिक सांख्यिकी पाठ्यक्रम का विस्तृत सैद्धांतिक विकल्प बनना नहीं है, इसके बजाय यह बताती है कि वास्तविक डेटा के साथ काम करते समय कौन से सांख्यिकीय विचार उपयोगी है, उन्हें कब लागू करना चाहिए और उनके गलत प्रयोग से कैसे बचना चाहिए। इसकी सामग्री डेटा की खोज और सारांश से शुरू होकर सैंपलिंग, प्रयोग, महत्व परीक्षण, रिग्रेशन, वर्गीकरण, सांख्यिकीय मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग तक जाती है। लेखक विशेष रूप से उस अंतर को भरते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग जानने वाले डेटा पेशेवर मॉडल तो चला सकते हैं, लेकिन अनिश्चितता, पक्षपात, वैध तुलना और मॉडल आकलन के सांख्यिकीय आधार को पर्याप्त रूप से नहीं समझते। इसलिए यह पुस्तक सूत्रों के संग्रह के बजाय निर्णय लेने की सांख्यिकीय भाषा विकसित करने पर केंद्रित है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से मॉडलिंग से पहले डेटा को समझना। पुस्तक का पहला केंद्रीय आग्रह यह है कि डेटा साइंस की शुरुआत किसी एल्गोरिदम से नहीं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से होनी चाहिए। औसत, माध्यिका, प्रतिष्ठक, प्रसरण और मानक विचलन जैसे सारांश माप डेटा के केंद्र और फैलाव का प्रारंभिक संकेत देते हैं, लेकिन अकेले ये पर्याप्त नहीं होते। असममित वितरण, असाधारण मान, अनुपस्थित मान और अलग अलग समूहों के पैटर्न औसत के पीछे छिप सकते हैं। इसीलिए पुस्तक तालिकाओं और दृश्य प्रस्तुतियों को विश्लेषण का सजावटी भाग नहीं बल्कि जांच का उपकरण मानती है। हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट और श्रेणीवार तुलना यह दिखा सकते हैं कि डेटा में कितने अलग व्यवहार वाले समूह हैं या किन अवलोकनों की आगे जांच चाहिए। यह दृष्टि मॉडल के निष्कर्षों की विश्वसनीयता से सीधे जुड़ती है। यदि इनपुट में मापन की त्रुटि, असंतुलित श्रेणियां या सीमित दायरा पहले ही मौजूद है तो जटिल मॉडल भी भ्रामक परिणाम दे सकता है। आर और पाइथन का उपयोग यहां केवल कोडिंग सुविधा नहीं है, दोनों भाषाओं के उदाहरण इस विचार को व्यावहारिक बनाते हैं कि विश्लेषक को डेटा को कई कोणों से देखना, सरल प्रश्न पूछना और अपनी धारणाओं की परीक्षा करना चाहिए। पुस्तक के अनुसार खोजपरक विश्लेषण अंतिम उत्तर देने का दावा नहीं करता बल्कि उचित सांख्यिकीय प्रश्न और आगे की जांच का आधार तैयार करता है। दूसरा, रैंडम सैंपलिंग और वितरणों के जरिए बड़े डेटा में पक्षपात को पहचानना। पुस्तक इस आम धारणा को चुनौती देती है कि डेटा की बहुत बड़ी मात्रा अपने आप बेहतर निष्कर्ष सुनिश्चित करती है। यदि डेटा जुटाने की प्रक्रिया पक्षपाती है तो लाखों रिकॉर्ड भी उसी पक्षपात को अधिक आत्मविश्वास के साथ दोहरा सकते हैं। रैंडम सैंपलिंग का मूल्य इसी में है कि वह उपलब्ध जनसंख्या के प्रतिनिधि हिस्से तक पहुंचने की संभावना बढ़ाती है और विश्लेषण की अनिश्चितता को मापने योग्य बनाती है। पुस्तक डेटा वितरण और सैंपलिंग वितरण के फर्क पर ध्यान दिलाती है। डेटा वितरण वास्तविक अवलोकनों की संरचना बताता है, जबकि अनेक संभावित नमूनों से मिलने वाले अनुमान किस तरह बदलेंगे यह सैंपलिंग वितरण बताता है। यही अंतर मानक त्रुटि, विश्वास अंतराल और अनुमान की स्थिरता को समझने में सहायक है। बूटस्ट्रैप जैसी रिसैंपलिंग विधियां विशेष रूप से उपयोगी हैं, क्योंकि वे जटिल गणितीय धारणाओं के बजाय उपलब्ध डेटा से बार बार नमूने लेकर अनुमान की परिवर्तनशीलता का आकलन करती है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश यह है कि विश्लेषक को डेटा की उत्पत्ति, चयन की प्रक्रिया और लक्ष्य जनसंख्या के बारे में सवाल पूछने चाहिए। केवल डेटा का आकार नहीं, उसकी प्रतिनिधिकता और संग्रह विधि निष्कर्ष की गुणवत्ता तय करती है। यह दृष्टिकोण सर्वेक्षण, ग्राहक डेटा, डिजिटल व्यवहार और किसी भी प्रेक्षणात्मक डेटा सेट पर समान रूप से लागू होता है। तीसरा, प्रयोग डिजाइन और महत्व परीक्षण में व्यावहारिक निर्णय की कसौटी। सांख्यिकीय प्रयोग का लक्ष्य केवल दो संख्याओं के अंतर को दिखाना नहीं बल्कि यह जानना है कि अंतर किसी हस्तक्षेप के कारण है या संयोग और व्यवस्थित पक्षपात के कारण दिखाई दे रहा है। पुस्तक नियंत्रण समूह, उपचार समूह, यादृच्छिक आवंटन और स्पष्ट परिणाम माप जैसे प्रयोग डिजाइन के सिद्धांतों को डेटा साइंस के संदर्भ में रखती है। उदाहरण के लिए, किसी वेबसाइट परिवर्तन, विपणन प्रस्ताव या उत्पाद सुविधा का असर आंकने के लिए तुलना योग्य समूह जरूरी है। यादृच्छिकीकरण ऐसे ज्ञात और अज्ञात कारकों को समूहों में संतुलित करने में मदद करता है जो परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। महत्व परीक्षण और पी वैल्यू को भी पुस्तक अंतिम सत्य के रूप में नहीं प्रस्तुत करती। उनका अर्थ उस संभावना से जुड़ा है कि शून्य परिकल्पना सही होने पर इतना या इससे अधिक चरम परिणाम मिले। यह किसी परिकल्पना के सच होने की प्रत्यक्ष संभावना नहीं है। इसलिए प्रभाव के आकार, व्यावसायिक या वैज्ञानिक महत्व, परीक्षणों की संख्या और डेटा संग्रह की गुणवत्ता को साथ देखना आवश्यक है। परम्यूटेशन परीक्षण जैसे तरीके यह समझने में मदद करते हैं कि देखे गए अंतर को लेबलों के यादृच्छिक पुनर्विन्यास से मिलने वाले अंतर के मुकाबले कैसे परखा जाए। पुस्तक का महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वह परीक्षण को बटन दबाकर मिलने वाले निर्णय के बजाय एक डिजाइन, तुलना और व्याख्या की प्रक्रिया के रूप में समझाती है। चौथा, रिग्रेशन और वर्गीकरण में पूर्वानुमान, व्याख्या और मॉडल आकलन। पुस्तक रिग्रेशन और वर्गीकरण को डेटा साइंस की अलग लेकिन संबद्ध समस्याओं के रूप में प्रस्तुत करती है। रिग्रेशन तब उपयोगी है जब लक्ष्य निरंतर मान हो, जैसे बिक्री, कीमत या मांग का अनुमान। वर्गीकरण तब प्रयुक्त होता है जब लक्ष्य किसी श्रेणी में रिकॉर्ड को रखना हो, जैसे ग्राहक के छोड़कर जाने या ना जाने का अनुमान। दोनों स्थितियों में केवल मॉडल फिट करना पर्याप्त नहीं है। विश्लेषक को इनपुट चरों, लक्ष्य की परिभाषा, प्रशिक्षण और परीक्षण डेटा के विभाजन तथा त्रुटि के उपयुक्त माप पर विचार करना पड़ता है। रिग्रेशन में अवशेषों का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बड़े अवशेष असामान्य अवलोकन, छूटे हुए कारक या मॉडल की गलत संरचना का संकेत हो सकते हैं। वर्गीकरण में सटीकता अकेली भ्रामक हो सकती है, खासकर जब एक श्रेणी बहुत दुर्लभ हो। इसलिए संवेदनशीलता, विशिष्टता, प्रिसिजन और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जैसे माप यह स्पष्ट करते हैं कि मॉडल किस प्रकार की गलती कर रहा है। पुस्तक पूर्वानुमान और कारणात्मक व्याख्या के बीच भी जरूरी अंतर बनाए रखती है। कोई चर भविष्यवाणी में सहायक हो सकता है, पर उससे कारण सिद्ध नहीं होता। यह सावधानी मॉडल के परिणामों को नीति, व्यवसाय या संचालन संबंधी निर्णयों में इस्तेमाल करते समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अंत में, सांख्यिकीय मशीन लर्निंग और अनलेबल डेटा से संरचना निकालना। पुस्तक सांख्यिकीय मशीन लर्निंग को केवल अधिक जटिल एल्गोरिदमों की सूची के रूप में नहीं देखती। इसका जोर इस बात पर है कि मॉडल डेटा से पैटर्न सीखते हैं, इसलिए उनके प्रदर्शन का आकलन नए और अलग डेटा पर होना चाहिए। प्रशिक्षण डेटा पर अत्यधिक अच्छा प्रदर्शन ओवरफिटिंग का संकेत हो सकता है, जहां मॉडल वास्तविक संबंध के बजाय नमूने के शोर को याद कर लेता है। होल्डआउट डेटा और क्रॉस वैलिडेशन जैसी विधियां इसी जोखिम को जांचने के व्यावहारिक साधन है। पुस्तक मॉडल की जटिलता और सामान्यीकरण के बीच संतुलन को महत्वपूर्ण मानती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का संदर्भ अलग है, क्योंकि वहां पूर्व निर्धारित लक्ष्य या लेबल उपलब्ध नहीं होता। क्लस्टरिंग और आयाम घटाने की विधियां डेटा में समूह, निकटता और अंतर्निहित संरचना खोजने में मदद कर सकती है। लेकिन पुस्तक इस निष्कर्ष पर भी जोर देती है कि क्लस्टर कोई स्वतः सिद्ध प्राकृतिक सत्य नहीं होते। अलग दूरी माप, अलग एल्गोरिदम या अलग पैमाने से अलग समूह मिल सकते हैं। इसलिए परिणाम का मूल्यांकन उपयोग के उद्देश्य, डेटा के आकार और विषय ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। यह संतुलित प्रस्तुति पाठक को मशीन लर्निंग को सांख्यिकीय अनुशासन से अलग जादुई प्रक्रिया मानने से रोकती है और मॉडल चयन, सत्यापन तथा व्याख्या को एक ही कार्यप्रवाह के हिस्से के रूप में रखती है। निष्कर्ष में, प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंटिस्ट उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जिन्हें आर या पाइथन का कार्यकारी ज्ञान है और जिन्होंने बुनियादी सांख्यिकी पढ़ी तो है, लेकिन उसे वास्तविक डेटा समस्याओं में लागू करने का स्पष्ट ढांचा चाहते हैं। यह शुरुआती डेटा विश्लेषक, मशीन लर्निंग अभ्यासकर्ता, उत्पाद विश्लेषक और ऐसे प्रबंधकीय पेशेवरों के लिए भी प्रासंगिक है जिन्हें मॉडलिंग के निष्कर्षों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना पड़ता है। पूर्णतः नए पाठक को कुछ अवधारणाओं के लिए अतिरिक्त अभ्यास की जरूरत हो सकती है, क्योंकि यह आरंभिक गणित पुस्तक की तरह धीमी गति से आधार नहीं बनाती। फिर भी इसकी भाषा और उदाहरण कठिन विषयों को उपयोग केंद्रित रूप में रखते हैं। पुस्तक की व्यावहारिक उपलब्धि यह है कि यह सांख्यिकी को डेटा साइंस कार्यप्रवाह के हर चरण से जोड़ती है, डेटा की शुरुआती जांच से लेकर नमूना चयन, प्रयोग, पूर्वानुमान और मॉडल सत्यापन तक। यह केवल यह नहीं पूछती कि कौन सा मॉडल चलाया जा सकता है, बल्कि यह भी पूछती है कि उपलब्ध डेटा किस निष्कर्ष को उचित ठहराता है। इसी कारण यह कई मशीन लर्निंग पुस्तकों से अलग है, जो एल्गोरिदम और कोड पर अधिक केंद्रित रहती है, तथा कई पारंपरिक सांख्यिकी पुस्तकों से भी अलग है, जो डेटा साइंस के निर्णयों और कंप्यूटेशनल अभ्यास से दूर रह सकती है। आर और पाइथन दोनों में उदाहरण दूसरे संस्करण को व्यापक बनाते हैं। इसे किसी एक बार पढ़कर समाप्त करने वाली पुस्तक के बजाय विश्लेषण करते समय बार बार संदर्भ लेने योग्य मार्गदर्शिका समझना अधिक उचित है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं पीटर ब्रूस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।